ओम शांति। मैं समझता हूं अभी आप सब योग युक्त में से अच्छे खासे वाचा में आ गए हैं। अभी आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता अगर मेरी तरफ हो तो मैं आपको कुछ बातें सुनाऊं। ओवरकमिंग एडिक्शंस, व्यसनों से कैसे दूर करें या व्यसन मुक्ति को कैसे पाए। आप में से कितने लोगों को पहले ज्ञान में आने के पहले व्यसन था? हाथ उठाइए। 3, 2, 5। बहनों में से किसी को तंबाकू, तफकीर, खैनी? क्योंकि मैं मनोचिकित्सक हूं, मस्तिष्क मनोरोग विशेषज्ञ और व्यसन मुक्ति का विशेषज्ञ डॉक्टर हूं ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो मेरे पास व्यसन मुक्ति के लिए बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं। उसमें बहनें भी आती है, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर जिनको पास्ट में व्यसन रहे हैं तो उनको सबको पता होगा कि व्यसन क्या चीज होती है, व्यसन से क्या क्या नुकसान होता है, व्यसन को छोड़ना कितना आसान या कितना कठिन होता है, और व्यसन छोड़ने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज से 40-50 साल पहले व्यसन को बीमारी नहीं कही जाती थी, आदत कही जाती थी, हैबिट कही जाती थी। फिर मेडिकल कॉलेज में, खास करके मनोचिकित्सा के एमडी के करिकुलम में, कोर्स में, कॉलेजेस में यह सिखाया गया कि जिनको व्यसन हो जाता है उसके कारण बहुत सारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है व्यक्ति को और परिवार को, और उसके कारण बहुत नुकसान होता है। तो जिस तरह से आम कोई बीमारी में नुकसान होता है, वैसे ही व्यसन के आदि होने के कारण बहुत सारा नुकसान होता है हेल्थ के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सब हिंदी समझते हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है कोई जो हिंदी नहीं समझता? साउथ इंडिया से कितने हैं? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, बट हिंदी तो समझ लेते ना? ठीक है। तो इसीलिए व्यसनों को बहुत चर्चाओं के बाद में, डॉक्टर्स के, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में चर्चा के बाद में उसे बीमारी के रूप में स्वीकार किया गया। बीमारी इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि समाज में आमतौर पर कई बार व्यसन को कुछ बहाना बना करके शुरू करते हैं। आप में से अगर कोई भाई जिसको पास्ट में व्यसन था, अगर बता सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ गलत मान्यताएं, गलत फहमियां समाज में व्यसनों के बारे में हैं। जैसे कि आमतौर पर अक्सर करके लोग कहते हैं कि शराब पीने से नींद अच्छी आती है। ये गलत बात है, ये भ्रांति है। शराब पीने से मान लो नींद आ जाएगी तुरंत, पर फिर सारी रात नींद फिटती रहती है, बीच बीच में नींद खुलती रहती है। तो जब सुबह उठता है व्यक्ति तो वो फ्रेश नहीं उठता है, हैंगओवर होता है और ये समझता है कि मुझे नींद आई ही नहीं है। तो पहली गलतफहमी ये है। वैसे ही तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी के बारे में एक गलतफहमी है। ये कहते हैं कि इसे पेट साफ आता है, इसलिए सुबह उठ के तुरंत पहले, ब्रश करने के पहले भी लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ले लेते हैं। यह भी एक गलत फहमी है। अगर यही बात हो, इसे लेटरिन साफ आती हो, कब्ज ठीक होती हो, टट्टी साफ आती हो, तो सारे डॉक्टर सबको बीड़ी सिगरेट देना शुरू कर दे, है ना? ये गलत फहमी है। दूसरी, ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां हैं व्यसनों के बारे में, और इसके कारण से व्यक्ति कई बार दोस्ती में, कई बार ऐसी गलत फहमियों में आकर के, कई बार अपने परिवार में कोई व्यसन का आदि है, पिताजी है, चाचा है, दादाजी है, उनको देख करके, कई बार दोस्तों के संग में, और कई बार तनाव, मानसिक बीमारियों के कारण व्यक्ति व्यसनों का आदि हो जाता है। व्यसनों के बहुत सारे कारण हैं, आपकी किताबों में बहुत कुछ लिखा है। मैं थ्योरी की बात नहीं करूंगा, थ्योरी आप सब पढ़ के रट सकते हैं, ठीक है? मोटे मोटे जो कारण है व्यसन के, उसमें एक हेरिडिटी का कारण है। जिस तरह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी के अंश वंशानुगत होते हैं, फैमिली में आते हैं, हेरिडिटरी होता है, अगर पिताजी को डायबिटीज है तो बेटे को या बेटी को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो हेरिडिटी में उसको जीन्स वर्षे में मिलते हैं। वैसे ही व्यसनों के कुछ जीन्स डॉक्टरों ने आइडेंटिफाई किए हैं, व्यसन भी फैमिली में चलते हैं। अगर दादाजी शराब पीते थे तो पिताजी भी पीते रहेंगे, उनका बेटा भी पीता रहेगा, इच्छा नहीं हो फिर भी। तो यह भी एक कारण है व्यसन का। दूसरा कारण पारिवारिक सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव, स्टूडेंट है तो पढ़ाई का टेंशन या बीमारी या संघ दोष, बहुत सारे कारण हैं व्यसनों के। मैं आपसे मुख्य मुख्य व्यसन कौन से हैं, इसको किस तरह से छुड़ाया जा सकता है, इसके दुष्प्रभाव, इससे क्या क्या हानि होती है, नुकसान होता है, ये बताऊंगा, और व्यसनों से दूर होने के लिए उपचार क्या क्या करने चाहिए। आप जहां भी हैं, जिस सेंटर पे हैं, घर में हैं, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, ये कोर्स आप करने के बाद में आप व्यसनी व्यक्ति को व्यसन छोड़ने के लिए कितनी प्रेरणा दे सकते हैं, कितनी काउंसलिंग दे सकते हैं, कितना अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, सही सही ज्ञान, गलत गलत नहीं, और उसके आधार पे वो व्यसन छोड़ने के लिए प्रेरित हो जाए और आप व्यसन छोड़ने में यथाशक्ति उसे सहयोग दें, मदद दें। आप में से कितने डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर? आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सहज है, क्योंकि डॉक्टर्स थोड़ा डरा भी देते हैं मरीज को, है ना, कैंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, फलाना ठीकना हो जाएगा, आपका लीवर फेल हो जाएगा, तो डॉक्टर का कहने का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। पर बाकी जो डॉक्टर नहीं है वो भी किस तरह से प्रेरणा दे व्यक्ति को व्यसन छोड़ने के लिए, तो इसके लिए आपको मोटी मोटी बातें मैं आपको सार में सुनाऊंगा। एक घंटा हमारे पास है, फिर हम, अगर आपको बीच में कोई ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो भी पूछ सकते हैं, या हम लास्ट में 10-15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके असाइनमेंट में, आपकी किताब में जो लिखा है उसमें से कुछ समझ में नहीं आता हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझे। जो भारत में पाए जाते हैं व्यसन, उसमें सबसे पहला व्यसन है निकोटिन, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तफखीर, खैनी, कुछ मंजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, मंजन करने से यहां जो गम्स हैं, हमारे मसूड़े, उसकी दीवार में से सीधा निकोटिन खून में मिल जाता है, तो अच्छा लगता है, नशा चढ़ता है, तो इसीलिए व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। सुबह सुबह कॉलगेट करने के बजाय या दातुन करने के बजाय उसी का, कोई कोई पेस्ट, टूथपेस्ट भी आती है जिसमें निकोटिन होता है। तो ये सबसे पहला जो व्यसन हुआ, ये तंबाकू, सबसे ज्यादा व्यसन तंबाकू का है पूरी दुनिया में, विशेष करके भारत में, चाहे गांव में हो चाहे शहरी इलाकों में हो। और इसको छोड़ने का तरीका क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या 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 होते हैं, आप सबको पता होगा, अस्थमा से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, फेफड़े की बीमारियों से लेके, ब्रोंकियाक्टेसिस से लेके, कैंसर से लेके, गले का, मुंह का, नाक का, सांस की नलियों का, पेट का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बहुत बढ़ जाना ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक भी आ जाना, उसके कारण से ब्रेन का अटैक पड़ जाना, पक्षाघात, लकवे का अटैक पड़ना, ये सारे नुकसान तंबाकू के, बीड़ी के, सिगरेट के कारण होते हैं। और इसलिए जितना हो सके जल्दी छोड़ना चाहिए। ये कहते हैं कि एक बीड़ी एक सिगरेट पीने से व्यक्ति का 30 मिनट का, 20 से 30 मिनट का आयुष्य कम हो जाता है। तो जितनी बीड़ी सिगरेट पीता जाता है वो आयुष्य कम होता जाता है। कुछ लोग बहुत हास्यास्पद तर्क पेश करते हैं, ये कहते हैं कि हमने देखा है कि जो सिगरेट बीड़ी नहीं पीते उनको भी कैंसर होता है। कुछ लोग थोड़े ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं ना, आपसे बहस करते हैं, आप अच्छा ज्ञान देने सुनाने जाएंगे कि भाई ये छोड़ दो अच्छा है, बीड़ी सिगरेट ये अच्छा नहीं है, वो आपको उल्टा ज्ञान सुनाएंगे। आप कहेंगे क्यों छोड़ना चाहिए, वो कहेंगे, आप कहेंगे कैंसर हो जाता है, वो कहेंगे हमने तो देखा है जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते उनको भी कैंसर होता है। जो छोड़ना नहीं चाहते हैं या जिनको बहुत ज्यादा व्यसन हो गया है, भारी व्यसन, तो वो समझाने से, काउंसलिंग से व्यसन छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका विल पावर भी इतना कम हो गया होता है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी डॉक्टर की ट्रीटमेंट का इलाज की भी जरूरत पड़ती है, पर अक्सर करके ये देखा गया है कि तंबाकू सिगरेट बीड़ी का व्यसन जो है वो व्यक्ति को ज्ञान देने से, सही सही ज्ञान देने से, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिजिकल मेंटल सोशल क्या क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं, वो सारा समझाने से छोड़ देते हैं। व्यक्ति का खुद का विल पावर हो अच्छा, अगर व्यक्ति का विल पावर कम है पर लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट अच्छा है तो भी ये देखा गया है कि व्यसन छोड़ने में बहुत मदद मिलती है। मान लो माँ बाप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं बेटे को, बेटे को लेके आते हैं डॉक्टर के पास या आपके पास कि भाई हमारे बेटे को जरा छुड़वा दो सिगरेट बीड़ी, है ना। अगर फैमिली सपोर्टिव है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, तो भी व्यक्ति का व्यसन छूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खास करके शराब के नशे में। इतिहास में हम नहीं जाएं, इतिहास जो है सारे विकारों का, सारे व्यसनों का इतिहास जो है सिर्फ द्वापर से ही है, उससे पुराना नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में हम अलग इतिहास का अलग सा क्लास रख सकते हैं, हम अभी वर्तमान की बात करें और व्यसनों को छुड़ाने की बात करें। इसी हिसाब से शराब अफीम सबका इतिहास अगर ढूंढने बैठे तो उसमें जाने से गड़बड़ है। जब पहले चाय निकली थी अंग्रेजों के जमाने में, आपको पता होगा, तो चाय फ्री में पिलाते थे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे फ्री में पिलाते थे। आप दादाओं को पूछना, आपके दादा या परदादाओं को पूछना, चाय फ्री में पिलाते थे। कोई भी नशे की चीज होती है ना, पहले फ्री में शुरू होती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें से बिजनेस हो जाता है, पैसे कमाने का वो चक्कर शुरू हो जाता है। खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। तो तंबाकू छोड़ने के लिए, बीड़ी सिगरेट छोड़ने के लिए सबसे अच्छी बात है व्यक्ति का खुद का विल पावर, फैमिली का सपोर्ट, आपकी तरफ से मोटिवेशन, प्रेरणा देना और सही सही ज्ञान देना, परामर्श देना कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे छोड़ना है। कुछ लोग कहते हैं हम तो धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं, ऐसे एकदम नहीं छूटता है, क्या करना चाहिए, एकदम छोड़ना चाहिए या दो दम छोड़ना चाहिए, हैं? सबसे अच्छा तरीका है एकदम अचानक छोड़ना। बाबा कहते हैं ना सब कुछ अचानक होना है, तो हमें अचानक छुड़वाना है सबका। उसके बाद थोड़ी सी तकलीफ होती है, हफ्ता 10 दिन विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। आपकी किताब में लिखा होगा कि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स अर्थात क्या? बार बार तलब लगना पीने की, किसी को देखते हुए सिगरेट पीते हुए वापस तलब लगना, थोड़ी कब्जी हो जाना, सिर भारी हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, भूख कम लगना, ऐसे ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। शराब छोड़ने के बाद में व्यक्ति को हाथ में कंपन होती है, हाथ में ऐसे ऐसे आपने देखा होगा जो शराबी होता है, हाथ कांपते हैं, जीभ कांपती है, आंखें ऐसे ऐसे कांपती है, थोड़ी पलकें, ट्रेमर्स जिसको कहते हैं, ट्रेमर्स इंग्लिश में, डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं इसको, उसको कोल्ड टर्की भी बोलते हैं, आपकी किताब में लिखा है कोल्ड टर्की। तो ऐसी ऐसी तकलीफें बहुत होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और नींद बिल्कुल नहीं आती है शराब छोड़ने के बाद, या बड़ा नशा अगर कोई करता है, अफीम या हेरोइन या ब्राउन शुगर, ये सब अफीम की चीजें हैं। अफीम, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये अफीम से बनता है, ओपियम से। और दूसरी जो है आपका जो भांग है, गांजा है, ये कैनाबीज है। भांग, गांजा, मैरिजुआना, विदेश में उसे मैरिजुआना कहते हैं। तो ये ज्यादा भारी व्यसन वाली मात्रा है। वैसे देखा जाए तो नशे के दो किस्म के द्रव्य होते हैं, एक सॉफ्ट ड्रग्स, दूसरी है हार्ड ड्रग्स। चाय, तंबाकू, ये सॉफ्ट ड्रग में आता है, ज्यादा भारी नहीं माना जाता है, है भारी पर उसको सॉफ्ट ड्रग्स कहा जाता है। और दूसरे जो हैं ड्रग्स, बड़े बड़े ड्रग्स जो हैं, अफीम, गांजा, कोकेन, विदेशों में कोकेन मिलता है, ये सारे हैं हार्ड ड्रग्स। इसको छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। अफीम तो इतना नशा करता है, अफीम अगर कोई अफीम का नशा एक बार कर ले, अफीम की सिगरेट, ब्राउन शुगर या हेरोइन की एक बार सिगरेट पी ले, जैसे आज से 10-15 साल पहले बहुत नशे का आपने भारत देश में, अपने खास करके बड़े शहरों में आपने सुना होगा, दिल्ली, बंबई, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्टूडेंट्स में ये ड्रग्स का नशा शुरू हुआ था। अगर एक बार व्यक्ति नशा करता है सिगरेट के रूप में, अफीम अर्थात जो मॉर्फिन नहीं आता है, प्रॉक्सीवन की जो गोली आती है वैसे ही, या कोडीन सिरप आता है, कफ का सिरप, ये सब मॉर्फिन में से बनता है, अफीम में से बनता है, ये इतना व्यसन बनाने वाला होता है, एडिक्टिव होता है, कि 100 में से 99 लोग उसके आदि हो जाते हैं। अगर एक बार व्यक्ति अफीम का नशा कर लेता है, उसे वापस 12 से 15 घंटे के अंदर वापस दोबारा चाहिए, और ये इतना महंगा है, गैरकानूनी है, अनैतिक है, लोग फिर उल्टा पुल्टा काम करके, चोरी करके, फिर उसके नशे के आदि हो जाते हैं, फिर उनकी सारी करियर बर्बाद हो जाती है, उनकी जॉब, नौकरी, धंधा, पढ़ाई, स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई सब चौपट हो जाती है। तो हार्ड ड्रग्स जितने भी हैं, चाहे वो अफीम है, चाहे हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, कोकेन है, गांजा है, चरस है, ये सारी चीजें तो बहुत नुकसान करती है, महंगी तो बहुत होती हैं, उसमें से कुछ कुछ दवाइयां बनती है, इसके दवाई के तौर में भी डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फिन में से दर्द शामक इंजेक्शन और दवाइयां बनती है, जैसे कि फोर्टवीन है, या पेंटाजोसिन है, या नॉर्फिन है। कुछ कुछ बीमारियों में व्यक्ति को बहुत ज्यादा असह्य दर्द होता है, बहुत ज्यादा, और उस टाइम डॉक्टर्स इमरजेंसी में ये इंजेक्शन इसके यूज करते हैं। मान लो किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसका इस्तेमाल होता है। ऐसे कुछ कुछ बीमारियों में जहां बहुत ज्यादा दर्द होता है मरीज को, तो वहां ये इंजेक्शन के रूप में इमरजेंसी में यूज किया जाता है। पर ये नशेले जो लोग होते हैं, नशेड़ी जो होते हैं, जिनको आदि हो जाते हैं, ये रोज इसका नशा करते हैं, इंजेक्शन के रूप में, चाहे टैबलेट के रूप में, चाहे पानी में घोल के अफीम, चाहे सिगरेट पी के, फिर इससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। हार्ड ड्रग्स जितने भी हैं, उसको छोड़ने के बाद में व्यक्ति को 2 से 4 हफ्ते तक बहुत तकलीफ होती है, और उसके लिए हमारे जैसे मनोचिकित्सक डॉक्टर्स के पास में जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो सहन नहीं कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो उनको भर्ती करना पड़ता है। कुछ जांच भी करनी पड़ती है, जैसे शराब से लीवर पे काफी नुकसान होता है, लीवर का सिरोसिस होता है, कई बार लीवर फेल भी हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मर भी जाता है, तो लीवर की जांच करनी पड़ती है, सोनोग्राफी वगैरह करानी पड़ती है। तो जिनको भी हार्ड ड्रग्स की आदत होती है, उनको 2 से 3 हफ्ता भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद में उनको बिल्कुल याद नहीं आता है, उसके बाद में अपने काम पे, अपनी पढ़ाई में वापस लग सकते हैं। एक मुख्य कारण होता है जो पाया गया है कि व्यक्ति व्यसनों का आदि क्यों बनता है, उसके पीछे के कुछ तनाव या तनाव से जुड़ी हुई कुछ मानसिक बीमारियां हैं। यह पाया गया है कि आधे से ज्यादा लोगों को चिंता की बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, तनाव की बीमारियां होती है, या कुछ अलग अलग किस्म की पागलपन जैसी बीमारियां होती है, मूड की बीमारियां होती है, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या स्किजोफ्रेनिया वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ मानसिक बीमारियों का इलाज मनोचिकित्सक से कराने के बजाय खुद व्यक्ति अपना इलाज शुरू कर देता है, शराब पी के या गांजा पी के। मान लो किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कोई कहता है यार थोड़ा सा अफीम खा लो, भूख लगनी शुरू हो जाएगी और नींद अच्छी आएगी, अफीम शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि चलो हम जाकर के डॉक्टर से राय ले, अपने फैमिली डॉक्टर से राय ले, है ना। पर समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उल्टा पुल्टा गैर दूसरे रास्ते पे भेज देते हैं, और उसके कारण से फिर वो नशे के आदि हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जिनको वास्तव में तनाव से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो उनको मनोचिकित्सक के पास अच्छी तरह से इलाज लेना चाहिए, तो वो व्यसनों से दूर रह सकता है। कई बार व्यसन छोड़ने के बाद में वो बीमारी वापस बाहर आती है, डिप्रेशन की बीमारी, टेंशन की बीमारी, चिंता की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी वगैरह वगैरह, तो उसके लिए फिर हमारे जैसे मनोचिकित्सक से अच्छी तरह से डायग्नोसिस करा के, निदान करा के, फिर उसका भी इलाज साथ में चलाना पड़ता है, तभी व्यक्ति लंबे समय के लिए फिर व्यसन से दूर रह सकता है। आपने अपनी किताब में अगर पढ़ा हो, कितने लोगों ने पढ़ा है आपकी किताब में व्यसन के बारे में चैप्टर, हिंदी या इंग्लिश में, आपकी किताब में कितने लोगों ने पढ़ा है, जरा हाथ उठाओ। गिने चुने लोगों ने, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में वाइवा पूछेंगे, वाइवा में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे। बुक्स अभी आई नहीं है, सही में कितने लोगों को बुक्स मिली है? मिली है? अच्छा, आधे लोगों को मिली, आधे लोगों को नहीं मिली, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, वी आर इंडियंस, ओके। हम आपसे बाद में बात कर सकते हैं, पर्सनली वन टू वन बात कर सकते हैं, ठीक ठीक है। सबके काम की बात जरा बात डिस्कस करें, चाइना की बात बाद में करेंगे, ठीक है। भाई साहब कह रहे थे कि चाइना में किस तरह से ड्रग्स कम हो गए, हमने बोला पहले हम भारत की बात करें ना, चलिए। भाई साहब को थोड़े प्रश्न ज्यादा ही आ रहे हैं, हम पर्सनल वन टू वन चिटचैट करेंगे, रिव्यान करेंगे, ठीक है, मेरा क्लास पूरा होने के बाद में। तो मैं बात कर रहा था, एक है कारण व्यसनों के, दूसरे हैं उसके दुष्परिणाम, क्या क्या नुकसान होता है, किस तरह के ड्रग्स मिलते हैं बाजार में, किस तरह के ड्रग्स से क्या क्या नुकसान होता है, और उसको दूर करने के तरीके, ठीक है। और उसमें मेडिटेशन का, काउंसलिंग का कहां तक रोल है और कहां तक रोल नहीं है। चाय को, कॉफी को व्यसन नहीं माना जाता है, डॉक्टरी भाषा में, मनोचिकित्सा की किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में इसे व्यसन नहीं कहते हैं। कभी कभी इसको व्यसन के रूप में माना जाता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीता है, उसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, धड़कन हार्ट की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हार्ट में दर्द होने लगता है, घबराहट का दौरा पड़ता है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया है, और दुनिया भर के टेस्ट करवा लेते हैं, फिर कार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर हमारे पास डॉक्टर भेज देते हैं मनोचिकित्सक के पास कि भाई इसको साइकोलॉजिकल लगता है, और हम पूछते हैं तो पता पड़ता है 8-10 ग्लास 12 ग्लास 15 ग्लास चाय या कॉफी पीते हैं। 2 या 3 कप तक अगर कोई व्यक्ति चाय या कॉफी पीता है सारे दिन में, तो टेंशन सुस्ती कम होती है, पर उससे ज्यादा कोई पीता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, घबराहट के दौरे पड़ते हैं, हार्ट अटैक जैसा भी होता है, और नींद भी फिट जाती है, रात को नींद नहीं आती है। पर इसको व्यसन के तौर पे अभी तक डॉक्टरों ने स्वीकार नहीं किया है। इसके पीछे एक दो कारण है। व्यसन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है एडिक्शन की, उसकी डेफिनेशन में एक चीज बहुत अहम मानी जाती है, किसी भी व्यसन के कारण व्यक्ति का अगर धंधा में नुकसान हो, उसके नौकरी पेशे में नुकसान हो, उसके सामाजिक संबंधों में नुकसान हो, या उसकी अपनी खुद की सेल्फ केयर करने में नुकसान हो, और वो कम से कम 3-4 हफ्ते से ज्यादा हो, तभी उसको व्यसन माना जाता है, एडिक्शन माना जाता है, ये डॉक्टर की भाषा में कहा जाता है। चाय कॉफी में ऐसा है नहीं, है ना, चाय कॉफी पी के तो अच्छा योग लगता है, देखो दीदी हंस रही है, है? देखो, पर 2 या 3 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, और शाम को 5 बजे के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे नींद देरी से आती है, और इसलिए फिर अमृत वेला भी मिस हो जाता है, है ना, और अमृत वेला मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। यह हुई चाय कॉफी के बारे में। चाय कॉफी में कैफीन नाम का तत्व होता है, कैफीन, और वही कैफीन जो है और भी चीजों में होता है, यह आपको पता होना चाहिए। चाय कॉफी के अलावा कैफीन आपकी कैडबरी चॉकलेट्स, आपका पेप्सी, आपका कोको कोला, आपके दुनिया भर के जो पाउडर्स मिलते हैं, बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स वगैरह वगैरह, ये सब में कैफीन होता है। आपका चोकोबार होता है, चॉकलेट आइसक्रीम होता है, जो भी कैफीन कलर की चीज है, कॉफी कलर की चीज है, चाहे वो आइसक्रीम है चाहे कोको कोला है, उसमें कैफीन होता है, और इसलिए बच्चों को चाहे बड़ों को इसका एडिक्शन हो जाता है। अगर आप एक कैडबरी बड़ी खाएंगे, वो आपके 3-4 कप कॉफी के बराबर होता है, और उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, इससे वजन भी बहुत बढ़ता है। खैर, अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हैं तो 1 कप चाय छोड़ दीजिए और 2 टुकड़े चॉकलेट के खा सकते हैं, या 1 कप कॉफी नहीं पीजिएगा और 3 टुकड़े चॉकलेट के खा लो, जिनको चॉकलेट खाने का शौक है। सबसे अच्छा तो नहीं खा, चॉकलेट खाने से उसमें इतना मीठा शुगर होता है कि वो दांतों को, मसूड़ों को नुकसान करता है, दांत सड़ जाते हैं, मसूड़े सड़ जाते हैं। तो इसलिए कैफीन जो है, या कैफीन जिस जिन चीजों में है, चॉकलेट, कैडबरी, कैफी, कॉफी, चाय, पेप्सी, कोका कोला, आपकी लिमका वगैरह सब में है, सब में कैफीन है, इसलिए इसका भी आदत हो जाता है। कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स का आदत हो जाती है, सुबह शाम दिन में 2-3 बार 4 बार पी लेते हैं, उससे और भी बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि वो केमिकल है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो है नहीं, गैस हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है वगैरह वगैरह, तो उससे दूर रहो सबसे अच्छा है। चाय कॉफी कितने लोग नहीं पीते हैं आप में से? बढ़िया, मैं भी एक जमाने में नहीं पीता था, पर माउंट आबू में आने के बाद में दादियों ने बोला कि चाय पीनी चाहिए, यहां बहुत ठंड होती है, कहते हैं, क्यों कहते, बाबा भी पीते थे चाय, तो फिर मैंने भी पीना शुरू कर दी। आप भी पी रहे हैं? अच्छा, चलो चलिए।
8 दिन में तो पी रहे हैं।
अच्छा, फिर घर जाके नहीं पियेंगे? अच्छा, मतलब मधुबन की भोलेनाथ के भंडारे की चाय अभी आप पीते हैं? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो ब्रह्मा भोजन के साथ में ब्रह्मा चाय भी मिल रही है, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तो ये हुई चाय के बारे में बात, तंबाकू के बारे में मैंने बात कर ली, शराब के बारे में कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। शराब के कारण कितने नुकसान होते हैं? शराब के कारण व्यक्ति का मूड जो है फ्लक्चुएट होता है, उसे गुस्सा बहुत आता है, उसे काम की क्रोध की भावनाएं बहुत बढ़ जाती है व्यक्ति में, उसके कारण से बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं घर में, परिवार में। अगर वो 2-व्हीलर 4-व्हीलर चलाता है तो कंट्रोल से नहीं चलाता है, बड़े फास्ट एकदम चलाते हैं, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हो, उसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए करीब 50-60% एक्सीडेंट जो इंडिया में होते हैं वो शराब पीने के बाद में होते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं रहता है, वो समझता है कि मैं रोड का राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं जैसे भी चलाऊं, वो हर किसी को ओवरटेक करते हुए आगे जाना चाहता है ना, धीरज का गुण तो चला जाता है शराबी में, और फिर गाड़ी कहीं भी टकरा देता है। आप में से कितने लोग शराब पीते थे पहले? मैंने तो टेस्ट ही नहीं करी, मैं बचपन से ज्ञान में था। चलिए, जिन्होंने टेस्ट करी है कैसा लगता है शराब, मीठा कि कड़वा? कड़वा। हमारे प्रोफेसर, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं गुजरात से हूं वैसे इस जन्म में, तो हमारे प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करते थे, मेडिकल कॉलेज में सूरत में, कि शराब इतना कड़वा होता है, कहते हैं न जाने लोग क्यों पीते हैं, समझा ना। गुजरात में तो हमें वैसे भी शराब प्रोहिबिटेड है, मिलती नहीं है, और मैंने तो टेस्ट भी नहीं करी, अच्छा है, और मैं सीधा फिर मधुबन में आ गया। पर यहां आके मैंने बॉटलें देखी, यहां शराबों की दुकान देखी इधर उधर, गुजरात में तो शराबों की दुकान है नहीं, है ना। हाँ जी, एक जमाने में तो शराब बिकता नहीं था, इसके पीछे भी पैसे कमाने की भावना है लोगों की। शराब पिलाने वाले आपसे भी ज्यादा होशियार है, वो टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हैं, अखबारों में देते हैं, क्रिकेट मैच स्पॉन्सर कर देते हैं, है ना, तो लोग समझते हैं हा, ये कंपनी कितनी अच्छी है, देखो क्रिकेटरों को क्रिकेट खिलाती है ना, जैसे दान पुण्य कर रही हो, दान पुण्य तो करते नहीं है लोग, है ना, 1 करोड़ रुपए का स्पॉन्सर करके उसके पीछे 50 करोड़ कमा लेती है ना। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट जो है ये बड़ी लुभावनी चीजें हैं, है ना, इसके पीछे पैसे कमाने की भावना होती है। तो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कोई भी नशे की चीज हो, इसमें से लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं। तमोप्रधान धंधा जो है ये नशे का है, गवर्नमेंट भी उसमें से रेवेन्यू कमाना चाहती है, गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा क्यों छोड़े, जब वो लोग 100 करोड़ का मुनाफा करते हो, गवर्नमेंट 50 करोड़ चाहती है उसमें से रेवेन्यू, है कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट में बैठे हुए भी पीते हैं, है तो फिर क्या करें, अभी उनको कौन समझाए, ठीक है ना। खैर ये अलग बात है, पर कहने का भाव यह है कि शराब जो है वो क्या क्या नुकसान करता है व्यक्ति को, खुद को तो नुकसान करता है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शराब नुकसान करता है, शरीर के सारे अंगों को, पेट में एसिडिटी होना, अल्सर हो जाना, लीवर फेल हो जाना, अंतड़ियां कमजोर हो जाना, कभी कभी दस्त लग जाना शराब के कारण, कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट की बीमारी हो जाना, शुगर बढ़ जाना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां शराब के कारण होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत लेवल पे तो बहुत नुकसान आता है, परिवार में भी बहुत नुकसान होता है, झगड़े बगड़े होते हैं, है ना, शराब सस्ती तो है नहीं, या कोई फ्री में पिलाता नहीं है, शराब के पीछे कितने पैसे वेस्ट हो जाते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है और बाप शराब पिए जा रहा है ना, तो बच्चों को नुकसान होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों को कपड़े नहीं मिलेंगे, वो परिवार में क्या सुख रहेगा, परिवार में अशांति रहेगी, झगड़े रहेंगे, मां बेचारी झगड़ा करती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, है ना, बच्चों के लिए ये करो ये करो, तो परिवार में भी काफी नुकसान होता है, समाज में इज्जत नहीं रहती है। शराबी की क्या इज्जत है आप सबको पता है, शराबी के घर में ना कोई बेटा देगा ना कोई बेटी देगा, है ना, अगर कोई रिश्ता भी बनाना हो कितने नुकसान होते हैं, आप सब देखते हैं, आप सुनते होंगे समाज में कितने हादसे होते हैं शराब के कारण। शराब के कारण व्यक्ति को गुस्सा इतना आता है जो कंट्रोल नहीं होता है, मारने पे हावी हो जाते हैं, शराबी को झगड़े करते हुए देखा होगा आपने, है शराबी जबर जम के झगड़े करते हैं, है ना, तो ये सारे नुकसान है और कितने नुकसान होते हैं उसमें। यह है पारिवारिक लेवल पे नुकसान, आर्थिक नुकसान, धंधे में भी नुकसान, शराबी जो होता है टाइम पे जाएगा नहीं धंधे पे, दुकान नहीं खोलेगा या नौकरी पे नहीं जाएगा, नौकरी पे उसका बॉस अगर कहेगा क्यों देरी से आते हो तो बॉस को ही धमका देगा, तुम कौन होते हो हैं जो मेरे को डांटने वाले। खैर, तो आप सबको मालूम है शराब से क्या क्या नुकसान होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, और आयु उसकी कम हो जाती है, कई बार तो हमने देखा है जवानी में हमारे पास पेशेंट आते हैं, लीवर फेल हो जाता है, लीवर का सिरोसिस होता है, लीवर में स्क्लेरोसिस होता है, लीवर के टिश्यू है डेड हो जाते हैं, तो उसके कारण खाना हजम नहीं होता, व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, सारी कमियां हो जाती है, विटामिन से लेके सब सारी कमियां हो जाती है, और कई बार तो लीवर इतना फेल हो गया हो जाता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है। लीवर फेल होने के कारण उसका दिमाग पे असर होता है, फिर उसके कारण से व्यक्ति जल्दी मर जाता है। जवानी में हमने तो देखे हैं माउंट आबू में, आबू रोड में, आसपास में बहुत सारे लोग जवानी में लीवर फेल होने के कारण मर जाते हैं, आपके गांव में शहर में भी आप देखते होंगे शराब के कारण लोग मर जाते हैं जल्दी। तो ये शराब के कितने सारे नुकसान हैं, और इसलिए भी शराब छोड़ना जरूरी है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब डिप्लोमा पास कर लेंगे उसके बाद में आप काउंसलिंग करेंगे, चाहे सेंटर पे चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी काउंसलिंग देंगे शराब पीने वाले व्यक्ति को या उनके परिवार को, तो ये सारी बातें समझा सकते हैं। आपको खुद को ही मालूम नहीं होगा आप क्या काउंसलिंग देंगे, भले डिप्लोमा की डिग्री मिल गई, है ना, डिप्लोमा की डिग्री के साथ साथ आपको सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। वैसे ही बड़े बड़े नशे हैं, जितने बड़े बड़े नशे हैं, अफीम, गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये पाउडर जैसे होते हैं पाउडर, और ये बहुत महंगे आते हैं। इतना छोटा सा एक मूंगफली के दाने जितना ब्राउन शुगर या हेरोइन का पाउडर जो है वो 200, 250, 300 रुपए का मिलता है, और व्यक्ति को ऐसे दिन में 4-5 बार चाहिए जब नशा करता है। अब वो पैसे कहां से लाएगा, चोरी करते हैं, फिर ये लोग मर्डर भी कर देते हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये पैसे लाने के लिए फिर वो चक्कर चलता है, या घर में चोरी करेंगे, पापा जी के शर्ट में से उठा लेंगे चोरी करके, या मम्मी जी के पर्स में से उठा लेंगे, या फिर दोस्तों से उधार लेंगे, या किसी के वहां डाका डालेंगे, सामान बेच देते हैं घर के, हाँ रास्ते पे आ जाते हैं, घर का बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, ये बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। तो बड़े बड़े जो ड्रग्स हैं, हार्ड ड्रग्स, ये तो और नुकसान करते हैं, और इसलिए जितना हो सके इसका जल्दी इलाज हो, इसके दुष्प्रभाव का ज्ञान हो व्यक्ति को, खुद को, परिवार को, और ऐसे लोगों से संग दूर हो जाए जल्दी जल्दी। कई बार तो हमने देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि देहरादून में बहुत अच्छी स्कूल है, चलो दून में पढ़ाते हैं बेटे को, बहुत पैसे हैं, वहां हॉस्टल में भेज देते हैं, भले महीने का 20-25 हजार रुपये घर खर्चा आए, माँ बाप सोचते हैं कि देहरादून में बेटा पढ़ रहा है ना, पर वहां जाकर के ऐसी संगदोष में फंस जाता है, आदि हो जाता है, जो फिर माँ बाप को मालूम ही नहीं पड़ता ये बेटा क्या कर रहा है, और फिर कितने सारे नुकसान करने के बाद में मालूम पड़ता है कि ये नुकसान हो गया। ऐसे स्टूडेंट को तो दून में पढ़ाने के बजाय अपने गांव में भले सिंपल स्कूल हो, साधारण स्कूल हो, वहां पढ़ाना, अपनी नजर के सामने पढ़ाना, वो अच्छा रहता है। फायदा देहरादून में नहीं मिलता है जितना गांव में मिलता है, अपने सामने सामने बेटा पढ़ता है, भले ग्रेजुएट बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा इंसान बने, और कम से कम व्यसनों से दूर रहे। तो कई बार संग दोष से, उस माहौल से, उस वातावरण से भी व्यक्ति को दूर करना बहुत जरूरी होता है। और ये मुश्किल होता है, कई बार ये मुश्किल भी होता है। बड़े शहरों में, दिल्ली में, बंबई में लोग रहते हैं, और वहां कुछ कुछ कॉलेजों में ये आजकल के यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके पास ताकत ज्यादा होती है ना। हाँ, तो वो उल्टे काम में ताकत ज्यादा लगाते हैं, अच्छे काम में ताकत नहीं लगाते हैं, उल्टे काम में ज्यादा लगाते हैं। तो ये एक दूसरे को नशा सिखाते हैं, और वो नशे से फिर नशे का चक्कर ऐसा जाल बिछा देते हैं कि उसमें से छूटना मुश्किल हो जाता है। आखिर में कई बार तो बच्चे को उस स्कूल से, स्टूडेंट को स्कूल से या कॉलेज से निकाल देना पड़ता है माँ बाप को, भले कितनी भी अच्छी स्कूल हो, कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो। तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी उपाय करने पड़ते हैं व्यक्ति को व्यसनों से दूर रखने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो बड़े नशे हैं, शराब है, अफीम है, हेरोइन है, गांजा है, उसके लिए उसके छोड़ने के बाद में 3 से 4 हफ्ते तक बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए 2 हफ्ते के लिए, कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए हमारे जैसे मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल में रह के इलाज कराना पड़ता है। आप ज्ञान दो, उनको प्रेरणा दो, आप उनको सहयोग दो, आप उनको मोटिवेशन दो, वो सब काम करता है, पर साथ में उनका इलाज भी कराना उस हालत में जरूरी होता है। कभी कभी पीने वाले होते हैं, वो तो आप उनको थोड़ा सा ज्ञान दे दो, वो छोड़ देते हैं, पर जिनको आदत हो जाती है, व्यसन हो जाता है, उनको कई बार भर्ती करना पड़ता है। कभी कभी सेंटर पे ऐसे जिज्ञासु आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें मेडिटेशन सिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि आपके योग से कितना व्यसन छूट जाता है ना। देखो बहन जी हंस रही है, तो अनुभवी है ना टीचर। कौन से सेंटर पे आप? सूरत सेंटर पे। सूरत में तो कम है, लेकिन शराब ज्यादा पीते हैं ना शराब सूरत में। खैर, तो सेंटर पे कभी कभी जो भारी नशा करने वाले व्यक्ति आते हैं, उनको मेडिटेशन सिखा के फिर थोड़ा सा युक्ति से उनको भेज दो मनोचिकित्सक के पास में, है ना। उनको बोलो मेडिटेशन भी करो और मेडिसिन भी लो साथ में, सिर्फ एक चीज से आपका व्यसन नहीं छूटेगा, ठीक है। नहीं तो कई बार वो बड़ा हंगामा कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार उनको बड़ी बीमारी होती है, बड़ी मानसिक बीमारी होती है, तो नशा छोड़ने के बाद में गुस्सा वुस्सा वगैरह सब कुछ करते हैं, तो इसलिए उस टाइम में आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप उसको संभाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे टाइम में उनको या तो फैमिली डॉक्टर के पास में भेज दो, उनके फैमिली डॉक्टर, या हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास में भेज दो। सब जगह तो मनोचिकित्सक होते नहीं है, बड़े शहरों में होते हैं आजकल, है ना। तो इसलिए आपका काम है कि डॉक्टर के पास भी भेजना, और आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन ज्ञान योग सिखा करके उनको थोड़ा फोर्स भरे, है ना, कि भाई आप छोड़ सकते हैं। उनकी फैमिली को भी सपोर्ट चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब व्यसन व्यक्ति छोड़ता है तो उसके साथ में फैमिली का सहयोग चाहिए। जी अच्छी बात है। जी, हाँ भेजते हैं, मुझे मालूम है। तो फैमिली को भी ज्ञान देना, फैमिली मेंबर्स को साथ में बिठाना, उनको समझाना, यह भी बहुत आवश्यक होता है नशा छुड़ाने के लिए। फैमिली की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, खास करके बेटे को प्यार मिले, ये बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, सच्चा प्यार मिले, ये भी बहुत जरूरी होता है। उसके कारण भी व्यक्ति जल्दी नशा छोड़ देता है। तीसरी एक चीज ये पाई गई है जो बड़े शहरों में अक्सर करके काम आती है, कुछ कुछ शहरों में, बड़े शहरों में, जैसे पेंशनर का एसोसिएशन होता है ना, गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद में, ऐसे एक्स अल्कोहलिक का एसोसिएशन होता है, उसको अल्कोहल एनोनिमस कहते हैं इंग्लिश में। जो शराबी कोई जमाने में रहे हैं बहुत साल और फिर शराब छोड़ दिया है, तो ऐसे एक्स शराबी, एक्स अल्कोहलिक, उनका एक ग्रुप होता है। वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे के अनुभव से वो शेयर करते हैं कि यार शराब छोड़ दो, हमने भी पी, अब तुम भी छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, वगैरह वगैरह। तो वो भी एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सपोर्ट देते हैं। पर ऐसे जो अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप है वो सिर्फ बड़े शहरों में है, बंबई, दिल्ली वगैरह वगैरह, तो छोटे शहरों में ऐसे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उनके पास भी ये नशेड़ी जो लोग होते हैं उनको भेज सकते हैं नशा छोड़ने के बाद में, ताकि उनको एक भावनात्मक सपोर्ट रहे, एक नैतिक सपोर्ट रहे कि देखो ये लोग 50 साल से पीते थे शराब, इन्होंने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ सकते हैं, ऐसे सपोर्ट मिलता है। ज्ञान योग के साथ साथ ये भी आवश्यक होता है। और बाकी सब किस्म का इलाज व्यक्ति को चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी चाहिए, ज्ञान योग का सोशल सपोर्ट भी चाहिए, और कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प भी करनी पड़ती है। व्यक्ति एकदम सब कुछ बेच बाज के रास्ते पे आ गया है नशे के कारण, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो उसका फ्री इलाज करने के लिए भी कुछ सहाय करनी पड़ती है। तो ये सब किस्म का इलाज देने के बाद में व्यक्ति नशे से दूर होता है। और आप अगर अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं, आप डिप्लोमा पढ़ेंगे, डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी वैल्यू एजुकेशन में, है ना, तो नशा जो है, व्यसन वाले जो व्यक्ति है, मरीज है, उनको किस तरह से आप काउंसलिंग देंगे, किस तरह से आप ज्ञान देंगे, किस तरह से उनको आप सहयोग देंगे, परामर्श देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है, बाबा ने बता दिया है, अचानक सब कुछ होना है ना, सब कुछ अचानक होना है। एक समय आएगा विनाश के टाइम में कोई चीज नहीं मिलेगी, न तंबाकू मिलेगी, न गुटखा मिलेगा, न शराब मिलेगा, न गांजा मिलेगा, है ना। तो बाबा के बच्चों को उस टाइम में बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा ऐसे नशे वाले लोगों को, क्योंकि आपको तो इतनी बढ़िया सकाश देनी है कि उनको एकदम योग लग जाए, नशा भूल ही जाए, है ना। तो उसके लिए आपको खुद अच्छे से काउंसलर बनना पड़ेगा। डिग्री तो आपको मिल जाएगी बढ़िया सा कैप पहना के बाबा के सामने, पर आपको आपके अंदर भी इतना ज्ञान, इतनी ताकत होनी चाहिए कि दूसरों को आप नशा छुड़ा सकते, है ना। आपके फैमिली में है कोई बड़े नशे वाले कोई है? हाँ, कौन है आपके घर में और किस चीज का नशा करते हैं? हाँ, अच्छा, कितने साल से पीते हैं?
10-20 साल।
और दिन में कितनी बार पीते हैं?
डेली।
दिन में एक बार, दो बार, एक ही बार?
शाम को।
ज्यादा पीते हैं, कम पीते हैं?
बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा, बड़बड़ाते रहते हैं, धमाल मस्ती, गुस्सा करते होंगे? हाँ, दंगा भी करते हैं। अच्छा, देखो, है ना। अच्छा, तो अभी आप चाचा की सेवा करो फिर, हैं? हाँ, अच्छी बात है ना, फिर अभी आपको चाचा जी की सेवा करनी चाहिए, है ना, अच्छी बात है। ठीक है, तो आप यहां से जाने के बाद में प्रोग्राम बनाना फिर, हैं? ठीक है ना, नहीं छूटे तो फिर हमारे पास ले आना या हमारे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है। चलिए, और अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो। हाँ जी बहन जी, अभी अभी आप प्रश्न सुनो। हाँ जी, अच्छा, कहाँ है? अच्छा, कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, देखो ऐसा है, कोई कोई डॉक्टर हैं, सर्जन खास करके, हाँ हमें मालूम है, कोई कोई डॉक्टर हैं जो रोज शराब पीते हैं। अभी मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं इलाज लेने के लिए, सर्जन भी आते हैं, अगर उनसे छूट नहीं सकता है क्योंकि उनको शर्म आती है, वो चाहते हैं छोड़ना, पर अपने शहर में हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास जाते नहीं है, क्यों? शर्म आती है, वो सोचेंगे देखो, है ना, लोग देखेंगे, देखो डॉक्टर खुद है ना शराब पीते छोड़ने के लिए, तो हिचकिचाते हैं, उनको अंदर से थोड़ी सी वो हीन भावना होती है। ऐसे डॉक्टर्स को दूसरे शहर में जाकर के हमारे जैसे डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। आप उनको थोड़ा प्यार से बोलना कि आपसे अगर छूट नहीं सकता हूं ना, तो आप जाकर के इलाज लो। उनको देखो, उनको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको मालूम है कि छोड़ने के बाद में कितनी तकलीफ होती है, छोड़ने के बाद में जो तकलीफ होती है उसके लिए 2-3 हफ्ता हमारे जैसे डॉक्टर के पास जाकर के भर्ती रह के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, फिर बिल्कुल याद नहीं आता है, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है ऐसे शराब छूट जाता है। अगर वो कहीं आनंद में, अहमदाबाद में कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते तो हमारे पास ले आना, यहां ग्लोबल हॉस्पिटल में भेज देना, ठीक है। हाँ जी, और बताइए लास्ट में। क्या नाम बोला आपने? व्हाइटिंग, हाँ, व्हाइटनर, व्हाइटनर, नहीं नहीं ये अलग चीज कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, जो आपका पॉलिश रिमूवर होता है या व्हाइटनर होता है, उसमें एक किस्म का हाइड्रोकार्बन होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा पेट्रोल को सूंघते हैं, कुछ बच्चे, उसमें से हाइड्रोकार्बन हो जाता है, उससे थोड़ा ब्रेन स्टिम्युलेट होता है, नशा चढ़ता है। ऐसे कुछ चीजें सूंघने वाली हैं, उसको इनहेलेंट डिपेंडेंस कहते हैं। ये इनहेलेंट है एक किस्म का, इससे भी नशा चढ़ता है, उसका छोड़ने का तरीका फिर अलग होता है, पर ये बहुत कम लोगों को होता है ये नशा। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, ये नशा है। अगर दिन में 10 बार 12 बार जाते हैं, नशा करते हैं, तो ये नशा है, क्योंकि उसमें भी नुकसान होता है, उसमें फेफड़े को, सांस की नलियों को बहुत नुकसान होता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह भी होता है, तो इसलिए उसको छोड़ना जरूरी है। इसका इलाज हमारे जैसे डॉक्टर के पास आकर के इसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। हाँ जी, क्या लेता है? सूंघता है, इसके लिए हमारे जैसे डॉक्टर के पास जाकर के दवाई लेनी पड़ती है, एक दो हफ्ते के लिए दवाई लेनी पड़ती है, तो हमेशा के लिए फिर छूट जाता है। हाँ जी, हाँ जी भैया जी, ध्यान से सुनिए, माइक दो जरा इनको, ताकि सब सुन सके, नहीं तो मुझे क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। हार्ट की गोलियां, हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, कुछ दवाइयां ऐसी है जो अफीम में से बनती है, जैसे मैंने पहले भी बोला प्रोक्सीवन नाम की जो गोली आती है, या मॉर्फिन की गोली है, या आपका जो सिरप आता है कोडिन सिरप, जिसमें कोडिन होता है, लिंक्टस कोडिन सिरप आता है, कफ सिरप, या जिसमें कोडिन चीज है वो कोडिन मॉर्फिन में से बनता है, ये सिंथेटिक मॉर्फिन है, केमिकल है, उसका भी नशा हो जाता है लोगों को। आपने देखा होगा कुछ लोग प्रोक्सीवन की गोलियां खाते हैं दिन में 10-10, 15-15, पेन को दूर करने के लिए नहीं, पेन कहीं भी नहीं है शरीर में, नशा चढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल कृत्रिम नशा चढ़ाने के लिए। यह भी एक किस्म की बीमारी है, यह नशे की बीमारी है। तो जो ये दवाइयां खाते हैं पेन किलर, आप सुन रहे हैं बहन जी, पेन किलर जो प्रोक्सीवन नाम की दवाइयां आती है उसमें भी अफीम होता है, और कुछ लोग इसके भी आदि हो जाते हैं। इसको छुड़वाने के लिए भी हमारे जैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मरीज को, खुद व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, इसमें इतनी तकलीफ होती है छोड़ने के बाद में कि उसके लिए 2-3 हफ्ते के लिए दवाई लेना पड़ता है। हाँ जी, जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बहन जी ने, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल अखबारों में, टीवी में एड आती है, बिना बताए चुपके से शराब छुड़ाने के लिए हमारे से संपर्क करिए, है ना, इसके पीछे डेंजर है, खतरा है, मैं बता देता हूं। ये जो दवाई होती है हमारे जैसे डॉक्टर देते हैं, वास्तव में ये दवाई जो होती है, अगर कोई रोज खाता है तो उसका शरीर पर कोई असर नहीं है, वो पेशाब में निकल जाती है बाहर, पर उसके ऊपर अगर व्यक्ति ने शराब पी ली तो शराब के और दवाई के बीच में इतना रिएक्शन होता है, व्यक्ति को उल्टियां होती है, छाती में दर्द होता है, बहुत जलन होती है, चक्कर आता है, बेहोशी जैसा होता है, व्यक्ति पूरी जिंदगी के लिए याद रखेगा कि मैंने शराब पी है, ऐसा हालत हो जाएगा, इसलिए पीनी नहीं है शराब। पर वो गोली जो है वो हमारे जैसे डॉक्टर एक प्रतिज्ञा लिखवाने के बाद में, समझाने के बाद में देते हैं, पर ये कुछ लोग जो हैं पैसे कमाने के लिए ये डायरेक्ट दवाई की दुकान से ब्लैक में इलीगली खरीद करके उसका पाउडर बना के बेचते हैं। गोली है सिर्फ 5-7 रुपए की, पर वो लोग 500 रुपया 200 रुपया लेकर के दे देते हैं, और घर में उसकी वाइफ को बोल देते हैं कि इसको भोजन में डाल देना, दाल में, कढ़ी में, सूप में डाल देना, चुपचाप। कभी कभी इसमें डेंजर है, व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, उसमें व्यक्ति मर भी सकता है, इसलिए ऐसी जगह पे नहीं ले जाना किसी भी मरीज को, जहां ये एडवर्टीजमेंट वाला मामला आता है कि बिना बताए चुपके से शराब छुड़ाओ या ये छुड़ाओ, ये डेंजर वाला मामला है, इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, ठीक है। वास्तव में उनको हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। हाँ जी बहन जी, तंबाकू छोड़ने में तो अगर व्यक्ति का विल पावर अच्छा है, फैमिली का सपोर्ट अच्छा है, तो तंबाकू के बदले में दूसरी चीज खाने के लिए दे सकते हैं, सौंफ दो, धनिया दो, आंवला दो, है ना, बिना तंबाकू वाली सुपारी दो, या चॉकलेट दो, पीपरमिंट दो, या लवंग दो, या दालचीनी दो खाने के लिए, तो छूट सकती है, उसमें दवाई की भी आवश्यकता नहीं है तंबाकू छोड़ने के लिए। कभी कभी तंबाकू छोड़ने के लिए जिनको बहुत ज्यादा भारी व्यसन है उनको दवाई देनी पड़ती है, और वो दवाई 3-4 हफ्ता लेनी पड़ती है, दवाई महंगी नहीं है, तंबाकू से सस्ती है दवाई, ठीक है। शराब छोड़ने के लिए जिसको शराब की आदत है, आदत, आदत मतलब छोड़ने के बाद में हाथ में कंपन होती है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को तो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अभी खर्चा तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो फ्री में हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पैसे लगेंगे। पर मैं समझता हूं शराब जितने रुपए का होता है रोज का, उससे कम रुपए का इलाज होता है। जैसे हमारे यहां ग्लोबल हॉस्पिटल में भी मान लो इलाज है, जनरल वार्ड में कोई रहता है तो 200-250 रुपया रोज का चलता है, खाना पीना रहना, व्यक्ति के साथ में एक व्यक्ति भी रह सकता है, समझा। तो इतना खर्चीला इलाज नहीं है, शराब से सस्ता है और 2-3 हफ्ते तक रहना पड़ता है, 2-3 हफ्ते तक। सक्सेस स्टोरी मेरे पास तो जो है वो 90-95% है। नहीं होता है, रिलैप्स नहीं होता है। सिर्फ इलाज देना, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देना, मनोपचार देना, साइकोथेरेपी देना, काउंसलिंग देना, उसके साथ साथ में मेडिटेशन देना, फैमिली को ज्ञान देना, काउंसलिंग देना, फैमिली का सपोर्ट जनरेट करना, ये सब अगर साथ साथ चलता है तो मैं समझता हूं 95% या उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। ठीक है, हां जी। कई बार क्या होता है, अच्छा प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनिए, बहन जी ने पूछा है, ये आर्टिफिशियल रिफ्रेशमेंट है। कई बार क्या होता है, हमारे खून में, हमारे ब्लड में शुगर कम होने के कारण, सोडियम पोटाशियम वगैरह कम होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने के कारण सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की तलब लगती है। वो आर्टिफिशियल तलब है, उसका इलाज यह है कि आप जाकर के थोड़ा फ्रूट खा लो, या केला खा लो, या दूध पी लो, या कुछ बादाम खा लो, या मूंगफली खा लो, या चाय पी लो, उसका इलाज सिगरेट नहीं है। अभी तो कानूनी तौर पे सिगरेट बैंड है, कानूनी तौर पे सिगरेट बैंड है। एक समय यह भी आएगा, मुझे तो लगता है कि इसकी खेती भी नहीं होगी, तंबाकू की, अफीम की खेती पर भी बैन आ जाएगा, तब क्या करेंगे, कहां से लाएंगे सिगरेट। तो उससे अच्छा है कि पहले से छोड़ दे, नहीं छूट सकती है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज, अपने फैमिली डॉक्टर के पास में जाए या हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास है। हाँ देखो, अच्छा प्रश्न पूछा। देखो ये भी एक गलतफहमी है, मुझे याद है हमारे माउंट आबू में, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में 20 साल से हूं, एक शराबी को मैंने 70 साल की उम्र में शराब छुड़वाया, 60 साल की उम्र में, और उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि उसका बाप उसको 3 साल की उम्र से सुबह और शाम को एक एक चम्मच शराब पिलाता था, सर्दी में, उसको खांसी जुखाम नहीं हो उसके लिए। उस बच्चे को बचपन से शराब की आदत हो गई थी और 60 साल की उम्र में ये इतना मशहूर हो गया था, एक 3-स्टार होटल में ये धोबी है, अभी भी है। 60 साल की उम्र में ये हालत थी कि माउंट आबू की शराब की दुकान सुबह 4 बजे वो खुलवाता था, और दिन में 4 बार उसको शराब चाहिए, एक बार नहीं 4 बार, और नामी ग्रामी था शराबी। उसको मैंने भर्ती करके, दूसरे मरीजों को 2-3 हफ्ता रखना पड़ता है, उसको मैंने 4 हफ्ता रखा था पूरा, उसके बाद उसने छोड़ दिया। अभी 15 साल से उसने टच नहीं किया, दूसरों को लेके आता है शराब छुड़वाने के लिए, समझा। तो ये एक गलतफहमी है, कुछ मां बाप, कुछ बाप जो होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सर्दी में, ठंडी में थोड़ी थोड़ी शराब बियर बच्चों को देनी चाहिए, एक एक चम्मच। इसके पीछे गलतफहमी है, क्या है, कफ सिरप जो होता है ना उसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, हल्का सा शराब होता है, पर उसके साथ में दूसरी दवाई भी होती है कफ के लिए, खांसी के लिए, वो ज्यादा काम करती है, शराब काम नहीं करता है। पर उसका उल्टा अर्थ लेकर के ऐसे लोग जो होते हैं बच्चों को बचपन से लेके एक दो चम्मच बियर शराब पिलाना शुरू करते हैं, ये गड़बड़ वाला मामला है, इसमें डेंजर है। वो तो अच्छा है कि ये 60 साल की उम्र तक जिंदा भी रहा, लेकिन दूसरे जो होते हैं वो तो 20-25 साल में ऊपर चले जाते, ऊपर भी नहीं जाते बीच में, समझा ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, सुना आपने, सुना, आर्मी में, एयरफोर्स में हर महीने उनको 2-4 बोतल फ्री में मिलती है शराब। सुनिए मैं आपको बताता हूं, मेरे पास वहां से भी पेशेंट आते हैं छुड़वाने के लिए। एक क्या कहें, गलत फहमी है या गलत ज्ञान आर्मी में, एयरफोर्स में लोगों को दिया जाता है कि शराब पीने से गुस्सा आता है, ताकि दुश्मन को आप मार सकते हो, समझा। दुश्मन को मारने के लिए आर्टिफिशियल ताकत शक्ति शराब से आती है, ऐसे उनको सिखाया जाता है। और इसलिए उनको बोतल भी फ्री में दी जाती है, महीने में 2 या 4 बोतल दी जाती है। पर यह गलत बात है। अगर यही बात हो तो जितने भी युद्ध हुए आजकल इतिहास में, भाई साहब इतिहास की बात करें तो इतिहास में अगर देखा जाए जितने युद्ध हैं, जो शराब पीने वाले हैं कभी हारेंगे नहीं, पर ऐसा है नहीं, है ना, शराब पीने वाले भी हार जाते हैं। तो ये एक गलत फहमी है जो आर्मी एयरफोर्स में फौज में लोगों को कहा जाता है। कुछ लोग हिमालय में बॉर्डर पे ऐसे एरिया में ठंडी ज्यादा होती है उसके लिए शराब पिलाते हैं। ठंडी को भगाने के दूसरे तरीके भी हैं, ठंडी को भगाने के लिए सिर्फ शराब नहीं है। हमारी किसी भी किताब में, कहीं डॉक्टर की किताब में ये नहीं लिखा है कि जब ठंडी व्यक्ति को लगती है तो शराब पिलाओ, ये गलत बात है, समझा। इसके लिए खाना खाना चाहिए, कुछ गर्म गर्म चीज खानी चाहिए, हलवा खाना चाहिए, समझा ना। अगर शराब से गर्मी आती हो तो माउंट आबू में सबको शराब पिलाई जाए, है ना, तो ये गलत बात है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं वही तो कहता था।
तो उसका बन भी जाता है सर, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है?
मैं बताता हूँ। देखा भाई जी ने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा पूछा है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं कि सुबह सुबह सिगरेट पियो या तंबाकू खाओ तो प्रेशर बनता है, लैट्रिन अच्छी साफ आती है। हाँ, आपको भी जो नहीं खाते पीते हैं उनको भी प्रेरणा देते, यार तुम भी शुरू कर दे, तुम्हारा भी लैट्रिन टट्टी साफ आई है। अगर इसी से टट्टी साफ आती है तो हम सारे डॉक्टर सबको तंबाकू सिगरेट देना शुरू कर देंगे, दवाई देंगे ही नहीं किसी को, है ना। ये गलत फहमी है। वास्तव में क्या होता है, हमारी अंतड़ियां जो है ना, ये मुंह से लेके अन्ननली से लेके पेट में अंतड़ियां ऐसे 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 हिलती रहती है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो अंतड़ियों को थोड़ी सी और हिला देता है जल्दी, तो जो टट्टी नीचे एकदम जमा होती है ना वो निकल जाती है फट से। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर खाना शुरू कर दो। तंबाकू के कारण कितनी सारी दूसरी बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, दुनिया भर की बीमारियां होती है। तो ये तो मूर्खता है कि टट्टी साफ करने के लिए आप तंबाकू खाओ, कल जाके कैंसर हो गया उसके पीछे 50 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा फिजूल में, है ना। सबसे अच्छा इलाज यह है कब्जी दूर करने का, आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे। पहली बात है सब्जी सलाद ज्यादा खाना चाहिए, पहली बात। कभी भी कब्ज नहीं हो और लैट्रिन रोज अच्छी तरह से साफ आए उसके लिए सब्जी सलाद ज्यादा खाना चाहिए। दूसरी बात, सारे दिन में पानी ज्यादा पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, कोई लीटर बीटर की बात नहीं है, सब गलत बात है। कोई 2 लीटर 4 लीटर का हिसाब नहीं है, कोई सुबह उठ के 5 लीटर पियो या 5 गिलास पियो, ये सब गलत बात है। पेशाब कभी भी पीला और बदबू वाला नहीं आना चाहिए, ये इसका नियम है। उस हद तक पानी पियो। अगर पेशाब पीला और बदबू वाला आता है इसका मतलब पानी की आवश्यकता शरीर को ज्यादा है। पानी औसतन 1 घंटे में 1 गिलास पीना चाहिए दिन में, ठंडी में छोटा ग्लास, गर्मी में बड़ा ग्लास। तीसरी बात, कब्ज नहीं हो उसके लिए आधा घंटा कम से कम वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप घर से सेंटर वॉकिंग करके जाएंगे तो और ही अच्छा है, लैट्रिन रोज कुदरती साफ आएगी। फिर भी लैट्रिन साफ नहीं आए तो जैसे भाई जी ने बताया, सुबह उठ के ब्रश करके मंजन करके गुनगुना 1.5-2 गिलास पानी ले लो, गुनगुना हल्का सा, उसमें आधा नींबू निचोड़ दो और चुटकी नमक डाल दो। नींबू में विटामिन सी होता है, वो अंतड़ियों को ऐसे हिलाता है, तो लैट्रिन कुदरती साफ आती है। 1.5-2 गिलास से ज्यादा नहीं पीना चाहिए सुबह उठ के। ज्यादा पानी पीने से सुबह उठ के, कुछ लोग ज्यादा पानी पीते हैं उससे कमजोरी आती है, इतना ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। नेचुरोपैथी वाले कुछ लोग कहते हैं 5-5 गिलास पियो, ये गलत बात है। क्यों? इसके पीछे कारण है, जो पानी हम पीते हैं वैसा का वैसा पानी यूरिन में नहीं निकलता है। यूरिन में हमारे शरीर में से सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं शरीर से, और उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाने के कारण, सॉल्ट निकल जाने के कारण कमजोरी आती है। सुबह सुबह ब्लड प्रेशर कम होता है, चक्कर आता है, चिड़चिड़ापन होता है, थकान होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए 2 गिलास से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। हाँ जी, और जी देखो ऐसा है ना, इसलिए तो भगवान को रोज मुरली में समझाना पड़ता है कि वेद शास्त्र झूठे हैं, शंकर जी ने ना भांग पी ना पिलाई, है ना, बराबर ना। तो ये वेदों शास्त्रों में जो कबाड़ा सब कर दिया है उसके कारण से लोग शिवरात्रि पे शिव का या शंकर का नाम लेकर के, झूठा नाम लेकर के भांग पीना चाहते हैं। उनको यह नहीं पता कितने लोगों को भांग का नशा चढ़ जाता है और उसके कारण से कईयों को पागलपन की बीमारी होती है, वो हमारे पास आते हैं। भांग जो है, भांग, गांजा, चरस, ये पागलपन की बीमारी को भी लाता है। हाँ जी, और कुछ? आप सारे नशेड़ी लोगों को मधुबन में भेजना चाहते हैं क्या? हाँ, तो जो छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आप कौन से सेंटर से? यूपी से। आप पहले तो डिप्लोमा लेकर के उनको अच्छा सा काउंसलिंग देंगे, है ना? आप यहां बैठे हैं डिप्लोमा लेने के लिए, पढ़ने के लिए। उनकी वाइफ को सुनाएंगे ना जाकर के, ये सारी बातें उनकी वाइफ को सुनाएंगे। उनकी वाइफ को पहले ये बताएंगे कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास में जाकर के इलाज कराओ अपने शहर में, या हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास में इलाज कराओ। अगर वहां से काम बन जाता है तो मधुबन में लाने की क्या जरूरत है, इतना दूर। ठीक है, फिर भी नहीं छूट सकता है तो फिर भले आप वेलकम आ सकते हैं फोन करके। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। बीच में इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। निकोटीन जिस चीज में है, तंबाकू में, सिगरेट में, बीड़ी में, उसको छोड़ने के लिए निकोटीन के गम्स कुछ कंपनी ने बनाना शुरू किए थे। वो कम हार्मफुल है, उससे नुकसान कम होता है। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी पीने से जो कैंसर वाले केमिकल है वो फेफड़े में, सांस की नलियों में कैंसर कर देते हैं। तो उसके एवज में, उसकी रिप्लेसमेंट में इन्होंने च्यूइंग गम बनाए थे, गम्स। 8-10 साल मार्केट में रहे, उसके बाद में हमारे जैसे डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि कुछ लोग च्यूइंग गम बहुत ज्यादा खा लेते थे। वो इतने खा लेते थे कि निकोटीन का ओवरडोज हो जाता था, उसके कारण से ब्लड प्रेशर 200-250 हो जाता था और कईयों को हार्ट अटैक के दौरे पड़ जाते थे। तो इसलिए उसको अभी बैन कर दिया है, अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये। हाँ, अच्छा, च्युइंगम विदेश से मंगवाते होंगे। ठीक है, विदेश में अभी भी अवेलेबल है। ना, नहीं, सादा पान, मीठा मसाला, उसका व्यसन नहीं होता है। उसमें जो तंबाकू होती है उसका व्यसन होता है, पर सादा पान जो होता है वो अच्छे पानी में लोग धोते नहीं है। पान वान जो बनाते हैं लोग पान की दुकानों पे, उससे पेट में एसिडिटी होना, गैस होना, इंडाइजेशन होना, पेट में कीड़े कृमि हो जाना वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए उसकी सफाई बवाई का तो होती नहीं है। चलता है, सादा पान खाता है तो चलता है, चाहे तुलसी का पान भी खा ले कोई वजह नहीं। ठीक, हाँ जी, और कुछ? छह महीना पीने के बाद भी लीवर फेल हो सकता है। इसलिए लीवर फेल होने के 10-15 कारण है। पीलिया होने के कारण भी लीवर फेल हो सकता है। कुछ मरोड़े के कीटाणु होते हैं, वो लीवर में चले जाते हैं, एब्सेस कर देते हैं लीवर, एब्सेस, उसके कारण भी लीवर फेल हो जाता है। शराब पीने से भी, शराब पीने से तो हमेशा ही हो जाता है। तो उसको दूसरा कोई कारण होगा, वो तो शराब नहीं पीता होगा ना, दूसरा। लीवर फेल होने के बहुत सारे कारण है। हाँ जी, और कुछ? जी 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 जी। अमल मतलब अफीम। हाँ ठीक है, हमारे पास आपके बाड़मेर, भीनमाल वगैरह से बहुत मरीज आते हैं ऊपर माउंट आबू में। देखो एक बात बताऊं, अगर उनको आदत है मान लो अमल की, अफीम की, तो छोड़ने के बाद में 2-3 हफ्ता बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए भर्ती करना पड़ता है। हमारे पास मरीज आते हैं, हम भर्ती करते हैं और दवाई लेना पड़ता है और छूट जाता है हमेशा के लिए, फिर छूट जाता है। अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जिस तरह से लैट्रिन साफ करने के लिए तंबाकू खा लो या सिगरेट पी लो, ऐसे दस्त, डायरिया बंद करने के लिए अमल खा लो। अभी आप सोचो, साइड इफेक्ट तो यही है कि अमल की कहीं आदत लग गई बच्चे को, फिर रोज मांगेगा अमल। डर यही है कि उसको आदत पड़ सकती है और फिर छोड़ नहीं सकता है, और आप ना छुड़वा सकते हैं। और अमल भी आपका 200-200 रुपए का आजकल रोज आता है, 200-250-300 रुपए का, आपको मालूम होगा डोडा जो है, यहां तो डोडा बोलते हैं मारवाड़ी में, ठीक है ना। हाँ तो कितना महंगा आता है इसबगुल, जानते हैं इसबगुल क्या है, सबको मालूम है इसबगुल? इसबगुल फाइबर्स हैं, जैसे सब्जियों के फाइबर्स हैं वैसे इसबगुल फाइबर है, नेचुरल कुदरती फाइबर है। इसकी एक विशेषता है इसबगुल की कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो पानी चूसता है और फूल जाता है। आपने सिर्फ 2 चम्मच खाया है तो उसका 20-25 चम्मच बन जाता है फूल के, पानी चूस के, और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो टट्टी बनाता है, लेटरिन बनाता है, तो लेटरिन साफ आती है। अगर आप इसबगुल खाते हैं तो अच्छा है। अगर आप सब्जियां कम खाते हैं मान लो, तो उसके बदले में रोज 2-2.5 चम्मच इसबगुल अगर खाते हैं रोज रात को, तो वो अच्छा है, उससे भी लेटरिन कुदरती साफ आती है ना, कोई नुकसान नहीं। हाँ जी, गुटका, हुक्का, वो भी है व्यसन, हुक्का बीड़ी जैसा ही है, तंबाकू ही होती है उसमें। आपने सुना, ये भाई ने प्रश्न पूछा है कि रॉ सैलड्स नहीं खाना चाहिए, कच्चा सब्जी वगैरह। ध्यान से सुनो, बड़े शहरों में, कुछ शहरों में, बड़े कुछ शहरों में गटर के पानी से सब्जी उगाते हैं, जैसे कि बॉम्बे, बॉम्बे में रेलवे के ट्रैक के पास में सीवेज का पानी, सीवेज के पानी, गटर के पानी से सब्जियां उगाते हैं, उसमें कीड़े होने की संभावना है, जो कृमि बोलते हैं वॉर्म्स पेट के, वो सब्जियों में कीड़े होते हैं। इसलिए अगर आपने वो रॉ सैलड खाया है तो उससे पेट में कीड़े पड़ते हैं, अलग अलग किस्म के कीड़े होते हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, और कुछ कीड़े जो होते हैं वो यहां पेट से दिमाग में भी जाते हैं और दिमाग में सिरदर्द वगैरह करते हैं, बेहोशी के दौरे लाते हैं। इसलिए बड़े शहर का जो सीवेज से, सीवेज के पानी से पकाया हुआ सब्जी है वो नहीं खाना चाहिए। जो पानी गटर का पानी है, सीवेज का पानी है बड़े शहरों में, उस पानी से पकाई हुई कोई भी सब्जी नहीं खानी चाहिए। हां जी, आप सुनिए बहन जी क्या कह रही है, सुनिए। हां जी, मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना तो मैं करवा दूंगा। चलिए, ये गलत, आपने मनमोहन सिंह जी को ये प्रश्न पूछना चाहिए, आपने गलत पूछ लिया, डॉक्टर को पूछ लिया प्रश्न। इसके पीछे कारण क्या है, मैंने बताया पहले, गवर्नमेंट हर जगह टैक्स लगाती है, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, ये सारे टैक्स। सही बात है, आप पॉलिटिशियन विंग के चेयरपर्सन हमारे ब्रिजमोहन भाई है, उनको जाकर के ये चीज बता देना और उनको बोल देना कि दिल्ली में मनमोहन सिंह जी को ये सुना दे जाके, ठीक है। चलिए, और कुछ है? हाँ जी भैया जी, हाँ जी, ध्यान से सुनिए। पार्टी में शराब पीनी पड़ती है? नहीं, फिर रोज पीते हैं क्या? नहीं। अच्छा, आप पहले तो उनको परामर्श देंगे, ज्ञान देंगे, उनको सकाश देंगे, उनको शुभ भावना, शुभकामना देंगे, आपके अंकल को, है ना, बैठ के कभी तसल्ली से, अंकल नहीं मानते हैं तो चाची तो है ही साथ में, उनको थोड़ा ज्ञान देंगे, वो थोड़ा सा उनको फोर्स भरेगी, है ना। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, बैठ के उनके फैमिली डॉक्टर को बोल दो जाके, फैमिली डॉक्टर उनको जाके समझाएंगे, है ना। फैमिली डॉक्टर के पास तो रेगुलर जाते होंगे अंकल जी, उनको जाकर के पहले से बोल दो कि ये हमारे अंकल जी पीते हैं पार्टियों में इधर उधर, है ना, कल जाके लीवर उनका फेल हो गया तो गड़बड़, तो उनको डरा दे थोड़ा, समझा ना। देखो ऐसा है, पार्टियों में कई बार बैठना पड़ता है, पर आप पार्टियों में बैठे ये जरूरी नहीं कि आप शराब पी के ही कंपनी दो, आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, आप सोडा भी पी सकते हैं, आप दूध भी पी सकते हैं, आप छाछ भी पी सकते हैं, लस्सी भी पी सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं, कंपनी जरूर दें, वो नाराज ना हो, पार्टी जरूर हो। चीयर्स, चीयर्स तो सबके, देखो आपके चेहरे पे चीयर्स हैं बिना शराब के, हैं? तो उनको बताना चाहिए कि भाई बिना शराब के भी अगर चीयर्स हो तो अच्छी बात है ना, हैं? चलिए आपको मालूम है, प्रश्न का जवाब मालूम है, आप कभी ना कभी आप अंकल को छुड़ाएंगे मुझे लगता है, अच्छा है आप छुड़ाइए, ठीक है। हाँ जी एक और लास्ट क्वेश्चन, की और भी है कुछ है, और भी है पीछे, अच्छा दो तीन है, अच्छा हाँ कौन से वाले, वो अलग चीज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है या हार्मोन देकर के जो करते हैं वो अलग चीज है, वो खा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी पीछे पीछे वाली बहन जी, हाँ आप ही, आप ही हैं। सौ में से एक या दो प्रतिशत ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ती है, अक्सर करके ज्यादा से ज्यादा 3 साल 5 साल दवाई का कोर्स होता है। अगर मुझे मालूम नहीं है उनको कौन सी बीमारी है, मस्तिष्क की मानसिक बीमारियां भी 600-700 किस्म की होती है, उसमें से 8-10 बीमारियां ऐसी हैं कि इसमें पूरी जिंदगी दवाई लेना पड़ता है, तो मुझे मालूम नहीं अगर वहां वाले डॉक्टरों ने अगर बोला है कि पूरी जिंदगी खाना है, क्योंकि मेरे पास तो मरीज आप लाए नहीं हो, है ना। चलिए ये तो व्यसन से संबंधित बात नहीं है, तो मानसिक बीमारी से संबंधित बात है। हाँ जी 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 भैया जी बोलिए, आप तो प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आ गए, अच्छी बात है, दवाई से फायदा है ना, अच्छी है ना मम्मी, ठीक है चलो कभी मधुबन ले आओ तो मेरे पास ले आना, फिर देख के आपको बताएं, ठीक है। हाँ जी यस यस यस, देयर आर सो मेनी प्रेजेंटेशंस अवेलेबल ऑनलाइन, गो टू द इंटरनेट, देयर आर सो मेनी गुड साइट्स ऑन एडिक्शन डी एडिक्शन। वेर आर यू एट द मोमेंट, विशाखापट्टनम। भाई जी ये पूछ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समझा, निवारण ही उपचार से अच्छा है, एडिक्शन ही नहीं हो उसके लिए स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम कर सकते हैं अवेयरनेस का, जागरूकता लाने का प्रोग्राम, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। सेंटरों पे बहनों का सहयोग लेकर के हमारी मेडिकल विंग की तरफ से एक डी एडिक्शन एग्जीबिशन बना है, व्यसन मुक्ति का एक एग्जीबिशन बना है, वो एग्जीबिशन भी आप लगा सकते हैं, आप सेंटर के कुछ डॉक्टर्स हो बीके डॉक्टर्स उनको ले जा करके प्रोग्राम कर सकते हैं, लेक्चर्स वगैरह दे सकते हैं, डेफिनेटली। देर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल नाउ ऑनलाइन, इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलेगा आपको मटेरियल, देर आर सो मेनी गुड साइट्स ऑन डी एडिक्शन, यू कैन डाउनलोड मेनी थिंग्स, स्लाइड्स वीडियोज मेनी थिंग्स। हाँ जी बस एक, अच्छा हाँ सुनिए, अभी एडिक्शन के बारे में पूछो ना, वेजिटेबल्स के ऊपर बाबा ने मुंबई के बारे में बोला है, चलिए तो उस टाइम सब सब्जियां उड़ी जाएगी सारी, चिंता नहीं करना। हाँ जी हाँ जी सुनिए बहन जी क्या पूछ रही है, देखो ऐसा है मेडिकल साइंस पिछले 100 साल से, एलोपैथी का साइंस जो है पिछले 100-150 साल से निकला है, ठीक है। पहले के जमाने में कॉलेरा में गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोग मर जाते थे, लाखों लोग मर जाते थे, प्लेग में लाखों लोग मर जाते थे, पोलियो में कितने लोग मर जाते थे, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी में कितने लोग मर जाते थे, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल आता गया है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस बढ़ा है वैसे वैसे। और अभी ऐसी रिसर्च हो रही है आपकी जानकारी के लिए कि कुछ सालों में सारी बीमारियां भाग जाएगी दुनिया से, एक इंजेक्शन दे दिया डायबिटीज गुम, एक इंजेक्शन दे दिया हार्ट की बीमारी गुम, एक इंजेक्शन दे दिया नया घुटना बन गया ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, एक इंजेक्शन दिया नया दांत निकल आएगा। फिर लोग 100-100 साल 125 साल 150 साल जिएंगे। देखो ऐसा है, बाबा तो कहता है वेद शास्त्र झूठे, सॉरी हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, आयुर्वेद वेद शास्त्र झूठे बाबा रोज कहता है। हो सकता है आज से 2500 साल पहले जब लिखा गया उस टाइम प्रकृति रजोप्रधान थी, रजोप्रधान लोग थे, उस टाइम वो काम करता होगा, पर अभी तो तमोप्रधान हो गया है, बीमारियां बहुत बढ़ गई है, प्रकृति तमोप्रधान है, ये शरीर ये दिमाग ये सब तमोप्रधान है, उसके लिए ये विज्ञान, बाबा कहता है ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों से सतयुग आएगा, सतयुग बनाने में साइंटिस्ट लोग मदद करेंगे, बिना ज्ञान योग के साइंटिस्ट आएंगे सतयुग में, बाबा ने बोला है, भगवान हुआ चे सुना है कभी अब एक मुरलियों में, क्योंकि वो सतयुग बनाने में मदद करेंगे, आपके सोने के महल बनाने में मदद करेंगे, आपके पुष्पक विमान बनाने में मदद करेंगे, सारी बीमारियां भाग जाएगी दुनिया से, डॉक्टर लोग सारे भूखे मरेंगे उसके बाद में, समझा ना। तो अभी आपके ऊपर है, आप कौन सी किसमें विश्वास करना चाहते हो, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, वेदों शास्त्रों में, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। हाँ जी, और कुछ? बस जी, ज्यादा मिर्च खाना, थोड़ा तो मिर्च खा सकते हैं, उससे क्या है खाना हजम होता है, थोड़ा मिर्च खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी होगा, अल्सर होगा, दस्त हो जाएगा। हाँ जी, देखो दादाजी लास्ट में खड़े हैं, लास्ट सो फास्ट है। हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा पैसे वाला था, अच्छा अच्छा बराबर। कहां से आप कहां से हैं? भुसावल, अच्छा बराबर। ये कितने साल पहले की बात है? तो आपने पैसे भरे थे क्या? तो खाया पिया फिर? हाँ बोलो, हाँ बोलिए। देखो तालियां बजाओ भाई, देखा ना, ऐसे दोस्त चाहिए जो दोस्तों को बदली कर दे, है ना, अच्छी बात है। देखो कहानी से लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है ना, तो ऐसे आप सब दूसरों को बदल सकते हैं ना अभी, ठीक है। अगर ये दोस्तों को बदल सकते हैं, पांच सात दोस्त कितने थे? आठ, पांच, अच्छा चलो अच्छा है ना, ठीक है। चलिए अभी बाबा को याद करें, कहां गया गीत बजाने वाला? और कोई? बस सभी संतुष्ट। चलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करना, डिप्लोमा का एग्जाम देना, नहीं तो गुप्ता साहब फेल करेंगे, याद रखना है, ठीक है। अच्छे काउंसलर बनना डिप्लोमा लेकर के, ठीक है। चलिए दो मिनट बाबा को याद करके फिर चलते हैं।